आज का प्रातः क्लास है 23/11/1965। रिकॉर्ड चला है तू प्यार का सागर है। ये जो अक्षर सुने कि तू प्यार का सागर है, तुम बच्चे जानते हो कि ये बाप सबसे प्यारा है, इसलिए कहते हैं प्यार का सागर है। बाप को जब याद करते हो तो बेहद का वर्षा भी याद आ जाता है। बेहद का वर्षा है ही सुख शांति, अल्पकाल की शांति नहीं, अल्पकाल का सुख नहीं, सदा काल का सुख और सदा काल की शांति। तो जब याद करते हो बाप को तो वर्षा याद आने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप है और वर्षा भी बेहद का है। जिसको बाप याद आवेगा और निश्चय हो जावेगा तो जरूर खुशी होगी। यूं तो शिव के मंदिर में भी जब जाते हैं तो शिवलिंग को शिव बाबा ही कहते हैं। शिवलिंग को शिव बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव उसमें रखी हुई बिंदी का नाम है और बाबा साकार को कहा जाता है। साकार रूप बड़ा रूप होता है, बिंदी तो छोटी होती है। तो वो शिवलिंग को शिव बाबा तो कहते हैं, परंतु उनों के शिव बाबा कहने से उनको इतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी तुम बच्चों को होती है। वो तो शिवलिंग पर फूल चढ़ाते हैं, दूध आदि चढ़ाते हैं, परंतु तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की दरकार ही नहीं रहती। तुम्हारी तो बेहद की बातें हैं, तुम तो बेहद का फूल चढ़ाते हो, तुम्हारे तो चैतन्य फूल हैं। वो भक्त दूध चढ़ाते हैं परंतु उनको पता ही नहीं है कि भगवान बाप जब आते हैं और 5000 वर्ष के ड्रामा की शूटिंग कराते हैं तो वो ही भक्तगण शूटिंग पीरियड में भगवान बाप के निमित्त रथ पर ज्ञान दूध चढ़ाते हैं, जिस दूध में पानी ज्यादा होता है और दूध कम होता है, अर्थात ज्ञान बहुत थोड़ा होता है। अभी तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की दरकार नहीं है, निराकार भगवान है तो वो पिता हुआ। बाप तो बच्चों को सब कुछ देता है, भगवान भक्तों का कहा जाता है। और वो ही भगवान रचयिता है, रचयिता बाप को कहा जाता है। उन्होंने इस मनुष्य सृष्टि को रचा, जब रचते हैं तो पहले पहले मनन चिंतन मंथन करने वाले मनु की रचना होती है। ये सारी मनुष्य सृष्टि मनु की औलाद है। ये भी गाया जाता है, उनकी भक्ति करते हुए फिर भी जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है उतना और किसी को नहीं चढ़ता। और धर्म वालों को इतना खुशी का पारा नहीं चढ़ता। भगवान का नाम सुनने से ही तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते हैं, बुद्धि में आता है। बाप से हमको बाप के घर का वर्षा भी मिलता है। बाप के घर का वर्षा है अखूट शांति, और बाप की मिल्कियत का वर्षा भी मिलता है। तुम बच्चे बाप के घर में ही जन्म लेते हो, बाप का घर है ही मधुबन। मधुबन में आकर के तुम्हारा जन्म होता है। उसमें कोई फिरती गिरती नहीं हो सकती। जायदाद तो फिर भी बाहर में इधर उधर रहती है। भल घर भी जायदाद है परंतु प्रॉपर्टी की फिरती गिरती हो जाती है। घर को अचल संपत्ति कहा जाता है। प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चे भी जानते हो हम बाप के घर के मालिक बनते हैं। जो घर है कभी भी बदली सदली नहीं हो सकता। स्वीट होम का बदली सदली नहीं होगा, बाकी राजाई तो कितना बदल सदल हो जाती है। तो वो है चल संपत्ति और ये है अचल संपत्ति। मुक्तिधाम चल संपत्ति है, यहां तो फिरती गिरती होती है। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी फिर वैश्यवंशी में आ जाती हो। तो मुक्ति होती है और फिर जीवन मुक्ति होती है। फिर तुम जीवन बंद में आ जाते हो। तुम बच्चे ही बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो और धर्म वाले बाप की प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बनते हैं। तुम जानते हो कि बाप की इमोबल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के तो सब मालिक बनते हैं। बाकी जो चंद संपत्ति है वो नंबरवार मिलती है बच्चों को, परंतु तुमको सबसे जास्ती और सबसे अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है। तुम स्वर्ग में राज्य करते हो। ये चार युग जो हैं, उसमें भारतवासी ब्राह्मण कुलभूषण मुख्य हैं। सबको भारतवासी नहीं कहेंगे, जो देवी देवता धर्म वाले हैं वो ही असल भारतवासी है। बाकी सब तो पूरा चक्कर ही नहीं लगाते हैं। तो इस धर्म वाला कोई और किसी धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा वो जरूर निकल आवेगा, और कन्वर्ट भी बहुत होते हैं। क्रिश्चियन धर्म में, बौद्ध धर्म में बहुत चले जाते हैं। धर्मों में बहुत क्यों चले जाते हैं? भारत में स्थायी होकर के क्यों नहीं रहते? क्योंकि दुनिया में भी श्रेष्ठ की संख्या बहुत कम होती है। निष्कष्ट की संख्या ज्यादा होती है। तो और धर्म में बहुत चले जाते हैं। हाँ, जब बाप आते हैं तो उन धर्मों से निकल करके कोई आ सकते हैं। तो बाप बतलाते हैं ऐसे बहुत कन्वर्ट हुए हैं। अभी देखने में आता है वो कन्वर्ट होने वाले भी कोई समय निकल करके आ जाएंगे। ये नॉलेज तो कोई धर्म वाले ले सकते हैं। इस सृष्टि चक्र को जानना तो बिल्कुल कामन है। बल कितने भी डल हेडेड हैं तो भी उनकी बुद्धि में ये तो आता है ना कि ये सृष्टि चक्र है। फिर बल करके सर्वगुण संपन्न नहीं बन सकते हैं। ऐसे भी नहीं है कि षष्ठ चक्र को जानने से कोई सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। नहीं, ये तो पढ़ाई है, وہ ہوتی ہے حد کی پڑھائی اور یہ ہے بے حد کی پڑھائی. یہ بے حد کی پڑھائی صرف تم بچے ہی جانتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم نے ہی اتنی بڑی دنیا میں باپ کو پہچانا ہے. تم بے حد کے باپ کے بچے ہو. تمہاری بدھی میں یہ رہنا ہے کہ یہ چکر کیسے پھرتا ہے. اور سب دھرم والے تو بعد میں آتے ہیں, تو تمہارے لیے یہ نالج بہت سہج ہے, کیونکہ تم تو سرشتی کے آج میں ہی آ جاتے ہو. پرنتو کوئی یہ بھی مشکل سے سمجھتے ہیں, ہے تو بہت سہج, پرنتو پھر اتنا یوگی بننا اور دوسروں کو بھی آپ سمان بنانا, ایسی محنت کرنے میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. کوئی بھی کے تو اچھا نام نکالتے ہیں, اتنا اچھا نام نکالتے ہیں کہ سب ان کو بہت یاد کرتے ہیں. اچھا سشٹی چکر کو تو جانا, پھر جاننے کے ساتھ ساتھ وہ اوستھا بھی چاہیے. کیونکہ سروگن سمپن بننے میں بہت محنت لگتی ہے, پرسارتھ کرتے کرتے کوئی نہ کوئی اوگن نکل پڑتا ہے. خود بھی کہتے ہیں میرے میں میٹھا بولنے کا گن نہیں ہے, اس کے لیے مجھے بہت پرسارتھ کرنا پڑتا ہے. باقی اہم آبجیکٹ تو سیدھی ہے. بابا نے کل رات کو بھی سمجھایا کہ تم یہ لکھ سکتے ہو ہم 5-4 برس پہلے موافق پھر سے یہ راج یوگ سیکھ رہے ہیں, کہاں بھی پردرشنی ہو و پروجیکٹ دکھایا جائے تو یہ ونڈرفل بات ضرور لکھنی چاہیے کہ 5000 برس پہلے موافق پھر سے تم کو اس پردرشنی دوارا راج یوگ سیکھنے کے لیے یکتی بتائی جاتی ہے. باپ کہتے ہیں کہ 5000 برس پہلے موافق تم سریمت دوارا یہ پرشارتھ کر رہے ہو. وہ بھگت لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ کلپ کی آئی ہوئی لاکھوں ورس ہے. کہتے ہیں کل یوگ تو اجن بچہ ہے, اور تم کہتے ہو 5000 ورس پہلے موافق دیوی سوراجی پد پانے کے لیے پرشارتھ کرایا جاتا ہے. تو ایسی بات سن کر کے منشی بندر کھاویں گے. یہ کیا لکھتے ہیں 5000 ورس پہلے موافق. پھر چکر کا راج بھی سمجھانا پڑے. یہ 5000 ورس کا چکر کیسے ہے؟ اگر کہیں کہ ستیوگ کو لاکھوں ورس ہوئے लाखों वर्ष पहले वाली वो देवताओं की आदम शुमारी कहाँ है? अगर सतयुग को लाखों वर्ष देवे तो देवताओं की आदम शुमारी 33 करोड़ ही क्यों कहते हैं? हिंदुओं की आदम शुमारी कम निकलती है और धर्म वालों की आदम शुमारी कितनी जास्ती हो गई है। हिंदू और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। तो उन धर्मों की आदम शुमारी जास्ती हो गई है। हिंदुओं से कितने मुसलमान बने होंगे? उन कन्वर्टेड मुसलमानों को शेख कहते हैं। तेईस 11:65 की वाणी का दूसरा पेज। ऐसे कन्वर्ट होने वाले भी बहुत हैं। कोई भी अपन को आज सनातन देवी देवता धर्म का मानते नहीं है। आज सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, परंतु ये हिंदू धर्म तो आज सनातन नहीं था। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, सनातन धर्म ब्रह्मा के बड़े पुत्र जो ज्ञान के हिसाब से बड़ा माना जाता है उसके नाम पर सनातन धर्म पड़ा है। तो अखबार में डालो, मैगजीन की बात नहीं है, क्योंकि अखबारें तो लाखों के अंदाज में छपती हैं। हाँ, वो अखबार वाले पैसे बहुत लेते हैं, फिर भी समझाने से वो डाल सकते हैं। चक्कर भी डाल सकते हो। बाबा ने जो प्रश्न लिखा है, गीता का भगवान शिव है व कृष्ण है, वो बात भी अखबार में डाल सकते हैं। डालने वाले कब लोन भी देते हैं, कब खर्चे पर भी डाल देते हैं। अच्छी बड़ी अखबार में डालें तो शायद 500 रुपया लेंगे। परंतु मुश्किलात ये है कि एक दिन ही डालेंगे बस। क्योंकि लगातार पड़े तब मनुष्यों की आंखें खुलें। एक बार डाला, कोई ने पढ़ा, कोई ने नहीं पढ़ा। रोज पढ़ने से मनुष्यों की आंखें खुलेंगी। जब आंखें खुलें तब आकर के ज्ञान सुने और समझें। फिर पुरुषार्थ करने में भी कितनी मेहनत लगती है। पुरुषार्थ करते करते बहुत माया के तूफान आते हैं। तो मेहनत है अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना, और प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी, परंतु अखबार तो चारों ओर जाते हैं। अखबार पढ़ने वालों के सारा दिन ख्यालात चलते रहते। तो वजन पड़ता है, क्या क्या किया जाए, कैसे सर्विस को आगे बढ़ाया जाए। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खिदमतगार बच्चे, तुम्हारा नाम है खुदाई खिदमतगार। सोसाइटी की सर्विस करना ये भी खिदमत है ना। तुम बच्चे जानते हो वो दुनिया में तो सब हैं आसुरी राक्षसी सोसाइटी, अब उनको दैवी सोसाइटी बनाना है। सारी दुनिया की सोसाइटीज को स्वर्ग में पहुंचाना है। अभी तो सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है। ये दुनिया पहले पहले स्वर्ग थी, अभी वही दुनिया नरक बन गई है। और ये स्वर्ग से नरक है, नरक से स्वर्ग है, ये चक्कर फिरता ही रहता है। ये सारा ड्रामा बना हुआ है। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं है, और जब नरक है तो स्वर्ग नहीं होता है। फिर कोई बताए कि वो स्वर्ग कहाँ चला गया। स्वर्ग जो ऊपर था वो नीचे चला गया। ये ड्रामा को तो फिर नहीं है। और ये चैतन्य ड्रामा है, सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट करते हैं, सारी एक्ट कल पहले मुआफिक ड्रामा प्लान अनुसार करते हैं। पुरुषार्थ भी हम ड्रामा अनुसार करते हैं। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है। ऐसे क्यों कहा कि पुरुषार्थ भी हम ड्रामा अनुसार करते हैं? क्योंकि हम आत्माओं में अनेक जन्मों का रिकॉर्ड भरा पड़ा है। जो अविनाशी रिकॉर्ड है वो ड्रामा की रील में घूमता रहता है। और तो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। वो ड्रामा को समझ जावे तो फिर ये बातें ठहर नहीं सकती कि कल्प लाखों वर्ष का है। तुम जानते हो कि ये स्वस्तिका का चित्र ठीक निकला हुआ है। स्वास्तिका की पूजा भी करते हैं। पूजा का कनेक्शन पवित्रता से है। परंतु उन पूजा करने वालों को ये पता नहीं है ये स्वास्तिका क्या चीज है। जर्मनी में हिटलर का भी यही निशान था, परंतु उन विचारों को भी अर्थ का कुछ भी पता नहीं है। तो ये चक्कर की बात समझानी पड़ती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये चक्कर फिरता रहता है, तुम मास्टर ज्ञान सागर हो तो तुमको खुशी भी होती है और तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम कहते हो हम मनुष्य से देवता नरसिंह नारायण बनते हैं, ये राजयोग है, राजा ही प्राप्त कराने का योग है। दुनिया का बड़े से बड़ा राजा नारायण है, विश्व का महाराजा बनते हैं, नरसे नारायण बनते हैं ना, कोई ने तो बनाया होगा। तो ये त्रिमूर्ति का चित्र सारा दिन बुद्धि में रहता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की राजाई मिलती है, शंकर द्वारा ये आसुरी सृष्टि खलास होनी है, बस सारा दिन बुद्धि में यही ख्याल चलता रहे। बहुत खुशी में रहना होता है। बाबा लॉकेट भी बनवाए रहे हैं, जिस लॉकेट से तुम बहुत सहज रीत समझा सकते हो। तुम्हारे थैले में भी ये चित्र लगवा सकते हो। त्रिमूर्ति और चक्कर और ये चित्र तो सात जगह लगाना जरूरी है। ये चित्र सर्विस के लिए ही दिया जाता है। जो सेंसिबल बच्चे होंगे वो इस चित्र पर अच्छी रीति जाकर के समझावेंगे। बल लक्ष्मी नहाने के चित्र में सब है, कृष्ण का भी चित्र है, परंतु उसमें सिर्फ चक्कर नहीं दिया हुआ है। एक चित्र में सब चीजें कहां तक डाल सकते हैं, इसलिए वो फिर समझाया जाता है। बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत रॉयल रीति बनाते हैं। ऐसे तो कृष्ण के चित्र भी अच्छे अच्छे बने हुए हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं है ये राधे कृष्ण ये लक्ष्मी नारायण कौन है। तुमको तो अब कितनी नॉलेज मिली है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। दुनिया में कहां भी जाकर तुम सर्विस कर सकते हो। श्रीनाथ द्वारे में भी जाकर के समझा सकते हो। कृष्ण लोगों को समझाओ, कास्केट लेकर के कोई भी बड़े आदमी को खोल कर बैठ समझाने से बहुत खुशी होगी। वो समझेंगे। ये तो जैसे भगवान स्वयं रूप धारण करके समझाए रहे, कोई कोई बच्चों में सर्विस का हैरस होता है, परंतु बड़ों बड़ों के पास जाते नहीं है। कहां भी जाए तुम मुलाकात कर सकते हो, इसमें खर्चे की बात नहीं है, क्योंकि पहले तो वो लोग यही समझेंगे शायद ये कुछ लेने आए। सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए, युक्तियां नहीं रचते हैं तो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हरेक को अपनी दिल से पूछना चाहिए, बहुत रहम दिल बन करके बहुतों का कल्याण करना होता है। अगर ज्ञान का स्वाद नहीं है तो रहम दिल बनने का वो नशा भी नहीं चढ़ता है। नहीं तो तुम जैसे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा बच्चों को युक्तियां बहुत समझाते हैं, अच्छा ओम शांति। एक छोटा सा रात्रि क्लास है, June 9, 1966। तुमको विश्व की बादशाही मूठ में देते हैं, तुम और कुछ भी नहीं करो, बाप को याद करो, जिस बाप से वर्षा मिलता है याद करो और पवित्र रहो। जो कुछ इस दुनिया में देखते हो समझो कि वो सब खत्म हो जाना है। इतना करते रहेंगे तो तुमको बाप बहुत अच्छे रीति संगारते रहेंगे। जितना तुम्हारा श्रृंगार होता है इतना और कोई का श्रृंगार नहीं होता है। ये क्वीन भी तुम्हारी भेंट में फकीर यानी है, तुमको कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, सहज युक्ति बताते हैं। बाप से ही तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन सकते हो। तुम्हारी मुट्ठी में विश्व की बात चाहिए है, ऐसी बात सही देते हैं जो पूरी झोली भर देते हैं। कई कई ऐसे देह अभिमानी होते हैं जो देह अभिमान के कारण झोली भरते तो हैं लेकिन छेद होने के कारण सारा बह जाता है। देही अभिमानी रहो तो झोली भरी रहे, अथाह धन मिलता है सिर्फ बाप को याद करने से। बाप कहते हैं तुम तुम भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते आए हो, परंतु बिना समझे बिना पहचाने कहते थे हम अपना ठिकर ठोबर आपको दे करके आपसे विश्व की बात सही लेंगे, आप हमें खजाना देते हो 21 जन्मों के लिए। बाप कहते हैं आगे तुम दान करते थे तो अगले जन्म में ये वजह मिल जाता था, अभी बाप को इस एक जन्म में तुम थोड़ी मदद करो, सिर्फ ये हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुत कल्याण हो जाएगा। क्या बहुत कल्याण हो जाएगा? भक्ति मार्ग में तो एक जन्म का कल्याण होता था, यहाँ तो 21 जन्म के लिए तुम्हारा कल्याण हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट बाप को मदद करते हो। तुमको 21 जन्मों के लिए उजूरा मिल जाता है, बाबा मम्मा का मिसाल देते हैं। मम्मा पैसा नहीं लाई थी, गरीब थी, फिर भी देखो लक्ष्मी बनती है, कोई खर्चा नहीं। बाप को याद करते करते आप समान बनने की सेवा करती थी। बच्चे जानते हैं कि शिव जयंती के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है, शिव जयंती कब कही जाए? कब कहे शिव का जन्म हुआ? विदेशी लोग तो शिवरात्रि नहीं मनाते हैं, भारतवासी महाशिवरात्रि मनाते हैं। विदेशी लोगों के दिन की शुरुआत रात के 12 बजे होती है, और भारतवासियों के दिन की शुरुआत सूरज निकलने से होती है। तो कब कहें कि प्रत्यक्षता रूपी जयंती हुई? जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? ये भारत ही है जो अभी नरक है, ये भारत स्वर्ग बन रहा है। इसका नाम ही है भारत। भगवान बाप जब आते हैं तो भार अर्थात रोशनी में ही रहता रहता है। तो भारत को बाप कितना अच्छा वर्षा देते हैं। ये लौकिक बाप तो जहन्नुम में भेज देते हैं, पुरुष कोई को दान करते हैं तो स्त्री को भी आधा मिल जाता है। और स्त्री कुछ भी करती है तो स्त्री का ही बनता है। बाप का हिस्सा नहीं बनता। तो बाप कहते हैं चावल मुट्ठी से तुम्हारे महल बन जाते हैं, क्योंकि बाप का नाम ही है गरीब निवाज। सुदामा की कहानी है ना, ये माताएं तो बिल्कुल गरीब होती हैं, कन्याओं के ऊपर कुछ है नहीं, वो मम्मा जैसा पद पा सकती हैं। उनकी तकदीर अच्छी है अगर सर्विस करने में लग जाएं। राजा बनना है तो प्रजा भी जरूर बनानी पड़े, वारिस भी बनाना है। अगर माला में पिरोना है तो वारिस भी बनाना पड़े। वारिस क्वालिटी नहीं बनावेंगे तो माला में भी नंबर नहीं आवेगा। ड्रामा अनुसार हम साक्षी होकर के देखते रहते हैं। कल अब पहले मुआफी के जिसने जितनी मेहनत की है वो अभी भी देखने में आवेगा। देखना होता है, प्रजा बनाने वाले हैं, भक्त बनाने वाले हैं या वारस बनाने वाले हैं या तीनों प्रकार की सर्विस करने वाले हैं। बाप के वारिस भी होते हैं, बाप की प्रजा भी होती है, बाप के भक्त भी होते हैं। ड्रामा अनुसार ये साफ कराते रहते हैं। बाकी वर्षा बहुत भारी मिलता है तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल, बहुत काल अलग रहे माना कितना अलग रहे। हिसाब तो होता है ना, कितना अलग रहे। कोई तो पूरे 5000 वर्ष अलग रहे और कोई कोई फिर नंबरवार कम भी होते जाते हैं। तो जो पूरे 5000 वर्ष अलग रहे, सत्यनारायण की कथा तो है ना, सत्यनारायण की कथा है या सत्यनारायण की कथा है, परंतु नारायण पहले होता है या नर पहले होता है। तो नर सत्य होगा या झूठा होगा। इस दुनिया में तो सारे ही झूठे हैं, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। बाप आकर नर को नारायण बनाते हैं। एक नर नारायण की कथा भी है। ये कथाएं कहाँ की यादगार है? सत्य नर से नारायण बनाने वाला सदगुरु है। बाकी सब झूठे गुरु हैं। जिनके लिए शास्त्रों में गायन है, हरह शिष्य धन छोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। तो सब झूठे गुरु हैं, अपनी भी दुर्गति करते हैं और शिष्यों की भी दुर्गति कर देते हैं। तो ये सिद्ध करके बताया जाता है कि गुरु तो साकार ही होते हैं, परंतु उन अनेक साकार गुरुओं के बीच एक ही सदगुरु है जिसके लिए सिख लोग कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त। मूर्त माने साकार। कैसी मूर्त? अकाल, जिसको काल खा नहीं सकता। सत्य ही अकाल होता है। सत्य कभी मरता नहीं है। झूठे खलास हो जाते हैं। तो सदगुरु अकाल का ये तख्त है। ये भ्रकुटी आत्मा का तख्त है। जिस तख्त पर बैठ करके आत्मा पार्ट बजाती है, तो ये अकाल मूर्त है। अभी इस अकाल मूर्त ने ये रथ लिया है। कहते हैं मुझे इनका आधार लेना है। जो आत्मा पहले नंबर में थी वो ही अब लास्ट में है। इनमें प्रवेश करूंगा फिर ये पहले नंबर में जाएगा। अच्छा, ओम शांति।